एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
चिंता और धोखा देता है धन, बीज का ये नाश करे दबा दे यीशु के वचन, दबा दे यीशु के वचन। लोभ लालच में डूबा है मेरा मन, जग की चिंता धोखा देता है धन। देता है तन, बीज का ये
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम सब तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और हमें तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। पिता हमें समझ शक्ति दे कि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे नज़दीक आ सके और तेरे रास्ता में चल सके। पिता मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे और तेरा सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचनों को अच्छी तरह से तेरे लोगों को बतला सकूँ, जिससे सभी को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। आज हम हमेशा उपस्थित रहने वाला उद्धारकर्ता के विषय में सीखेंगे। जब स्कॉटलैंड का पीटर नाम का लड़का एक काली स्याह रात घास से भरे जंगल में खो गया, परमेश्वर ने उसे नाम से बुलाया, पीटर। जब स्वर्गीय आवाज ने फिर से बुलाया तो पीटर अपने स्थान पर रुक गया, नीचे देखा और पाया कि वह एक छोड़ी जा चुकी चुना पत्थर की खदान में गिरने से एक कदम दूर था। क्या यह अद्भुत नहीं होगा अगर हम सब परमेश्वर को अपना नाम पुकारता हुआ सुनेंगे? क्या यह अच्छा नहीं होता अगर वह हमारा करीबी साथी होता? अगर हम वास्तव में एक साथ बैठकर हमारे संघर्ष और सपनों के बारे में लंबी बातचीत कर सकते। हमारा यीशु तक असीमित पहुंच है, माने या ना माने, अभी हम यीशु के जितने करीब आ सकते हैं उतना तो तब भी नहीं आ पाते यदि वह यहाँ पर एक साक्षात व्यक्ति के रूप में रहता। हमारे शहर में शारीरिक रूप में मसीह का होना निश्चित रूप से अद्भुत होगा, लेकिन नज़दीक से देखने वालों की धक्का मुक्की करती भीड़ के बारे में सोचे, उसके समय की मांगों के बारे में सोचे, हमारे लिए अच्छा यही रहेगा कि हमें जीवन भर में एक बार बातचीत करने के लिए कुछ मिनट मिल जाएं। मसीह चाहता है कि उसका हर किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध बने। यही कारण है कि उसने इस धरती को स्वर्ग में एक विशेष सेवकाई के लिए छोड़ दिया, ताकि वह हर दिन हमारे पास आ सके। क्योंकि यीशु एक स्थान तक सीमित नहीं है जैसे वह पृथ्वी पर था, पवित्र आत्मा के माध्यम से वह अब हर इच्छुक व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए निकट है। स्वर्ग में चढ़ने से पहले यीशु ने एक उत्साहजनक वचन दिया था जो हम मत्ती 28 का 20 में पढ़ते हैं। यहाँ इस तरह लिखा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, युग के अंत तक। स्वर्ग में मसीह क्या करता है जिससे वह हमेशा आपके साथ रह सकता है? क्या आप जानते हैं इसे? आइए हम इब्रानियों उसका 4:14-16 में पढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे पास एक महायाजक है जो स्वर्ग से गुजर चुका है, यीशु परमेश्वर के पुत्र, हम दृढ़ता से उस विश्वास के लिए दृढ़ रहें जो हम करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, लेकिन हमारे पास वह हैं जो हर तरह से परीक्षा में परखे गए तो भी निष्पाप निकले। आइए हम आत्मविश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4:14-16। स्वर्ग में यीशु को हमारे व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में रखने के आश्वासन पर ध्यान दे। हर तरह से परीक्षित जैसे कि हम हैं, हमारी कमजोरियों के साथ सहानुभूति व्यक्त करें, जरूरत के समय में हमारी मदद करें। यीशु के साथ हमारे महायाजक के रूप में अब सुदूर स्वर्ग की राह हमारे लिए अवरुद्ध नहीं है। मसीह हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें विश्वास के साथ कृपा के सिंहासन से संपर्क करने का आग्रह किया जाता है। यीशु स्वर्ग में किस स्थान पर हैं क्या आपको मालूम है? आइए हम इब्रानियों 10:12 पढ़ें। लेकिन जब इस याजक ने हर समय के पापों के लिए एक ही बलि चढ़ाई थी तो वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ गए। जीवित मसीह जो कोई समझता है वह सिंहासन पर परमेश्वर के दाईं ओर हमारे व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं। यीशु के जीवन ने उसे हमारे लिए याजक बनने के लिए कैसे तैयार किया, आइए हम उसके विषय इब्रानियों 2:17-18 पढ़ें। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 2:17-18। हमारा भाई जो हमारी मानवता को साझा करता है और हम जैसा परीक्षित था, अब पिता की दाहिनी ओर हमारा महायाजक है, हमारे जैसे बनाया गया। वह जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसने भूख, प्यास, प्रलोभन और थकान महसूस की है। उसने सहानुभूति और समझ की जरूरत महसूस की है। लेकिन सबसे ऊपर यीशु हमारे महायाजक होने के योग्य हैं, क्योंकि वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए मरा। उसने हमारे बदले मरकर हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई। यीशु समाचार सभी मनुष्यों के लिए और हर समय के लिए अच्छी खबर है। हम पुराने नियम में सुसमाचार पाते हैं। जब इज़राइल के लोगों ने सिनाई पर्वत के पास डेरा डाला तो परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर दिखाए गए निर्देश के अनुसार पर्वत पर आराधना के लिए एक पवित्र डेरा बनाने का निर्देश दिया। निर्गमन 25:40। लगभग 500 साल बाद पवित्र डेरे की जगह राजा सुलेमान के विशालकाय पत्थर के मंदिर ने ले ली और मंदिर को भी उसी योजना के अनुसार बनवाया गया जिसके अनुसार पवित्र डेरा बनवाया गया था। जब परमेश्वर ने मूसा को पवित्र डेरा बनाने के निर्देश दिए तो उनके मन में यह उद्देश्य था। निर्गमन 25:8 हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। निर्गमन 25:8। पाप ने मनुष्यों और उनके सृजनकर्ता के बीच एक दुखद अलगाव पैदा किया। पवित्र डेरा यह दिखाने के लिए परमेश्वर का एक तरीका था कि वह फिर से हमारे बीच कैसे रह सकता है। पवित्र डेरा और बाद में मंदिर पुराने नियम के समय में धार्मिक जीवन और आराधना का केंद्र बन गया। हमारे लिए यीशु की सेवकाई जो पवित्र स्थान में प्रकट की गई है वह इस तरह है। पवित्र स्थान और इसकी सेवाएं बताती हैं कि यीशु अब स्वर्ग में मंदिर में क्या कर रहा है और वह अब हमारे दैनिक जीवन में हम में से प्रत्येक को समृद्ध बनाने और मार्गदर्शन देने के लिए पृथ्वी पर क्या कर रहा है। क्योंकि धरती पर पवित्र डेरा स्वर्ग के मंदिर के समान बनाया गया था, यह स्वर्ग के उस पवित्र स्थान का प्रतिबिंब है जहां अब मसीह अनुष्ठान करता है। निर्गमन 25:40 में सेवाओं और जंगल में पवित्र डेरे की रीतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पवित्र डेरे की साज सजा का एक संक्षिप्त सारांश नए नियम में प्रकट होता है। अब पहली वाचा में आराधना के लिए नियम थे और एक संसारिक पवित्र स्थान भी था। इसके पहले कमरे में दीपक, मेज और पवित्र रोटी थी। इसे पवित्र स्थान कहा जाता था। दूसरे पर्दे के पीछे एक कमरा था जिसे परम पवित्र स्थान कहा जाता था, जिसमें सोने की धूपदानी और वाचा का सोने से मढ़ा हुआ संदूक था। इस संदूक में वाचा के पत्थर की तख्तियां थी जिस पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखी, जिसे हम व्यवस्था विवरण 10:1-5 में उसका विवरण पाते हैं। संदूक के ऊपर तेजोमय करूब थे, प्रायश्चित के ढकने, इसे दयालु सीट भी कहते हैं, पर छाया किए हुए थे ये करूब। इब्रानियों 9:1-5 में पढ़ने से यह मिलता है। पवित्र डेरे में दो कमरे, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान थे। पवित्र डेरे के सामने एक आंगन बनाया गया था। आंगन में पीतल की वेदी खड़ी थी जिस पर याजक बलिदान चढ़ाते थे और हौदी थी जिसमें वो हाथ पैर धोते थे। पीतल की वेदी पर दिए गए बलिदान यीशु का प्रतीक थे जो सूली पर बलिदान देकर परमेश्वर का मेमना बना जो दुनिया के पाप ले लेता है। यूहन्ना 1:29। जब पश्चाताप करने वाला पापी अपने बलिदान के साथ वेदी पर आया और अपने पापों को मान लिया तो उसे क्षमा और शुद्धता मिली। इसी तरह पापी आज यीशु के खून से क्षमा और शुद्धता प्राप्त करते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, एक पर्दे ने लोगों से पवित्र स्थान को छुपाया हुआ था क्योंकि याजक उनको आंगन में सेवकाई देते थे। दूसरा पर्दा जो परम पवित्र स्थान के सामने था, अंदरूनी कमरे को याजकों को अंदर आने से अवरुद्ध करता था जो पवित्र स्थान के पहले कमरे में प्रवेश करते थे। जब यीशु सूली पर मर गए तो पर्दे के साथ क्या हुआ, मती 27:51 में हम पढ़ते हैं, उस पल में मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक दो हिस्सों में फाड़ दिया गया था। जब यीशु की मृत्यु हो गई तो परम पवित्र स्थान का खुलासा हुआ। यीशु की मृत्यु के बाद एक पवित्र परमेश्वर और ईमानदार विश्वासी के बीच कोई पर्दा नहीं आ सकता है। यीशु हमारा महायाजक हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाता है, इब्रानियों 10:19-22 में। हमारे लिए मसीह का मरने के समय का प्रकाशन हुआ है। जैसे संसारिक पवित्र डेरा स्वर्गीय मंदिर के लघु प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता था, जहां यीशु अब हमारे लिए सेवकाई कर रहे हैं, पृथ्वी पर पवित्र स्थान में की गई सेवाएं स्वर्ग में जो है उसकी एक प्रतिलिपि और छाया थी, इब्रानियों 8:5। पुराने नियम की लेव्यस्था पुस्तक पवित्र डेरे में सेवाओं को विस्तार से बताती है। औपचारिक अनुष्ठानों को दो भागों में विभाजित किया गया था, दैनिक सेवाएं और वार्षिक सेवाएं। पर इतने खून क्यों? हम पढ़ते हैं इब्रानियों 9:22 में, खून बहाए बिना क्षमा प्राप्ति नहीं है। पुराने नियम के पवित्र डेरे में जो हुआ वह यीशु मसीह के बचाने के एक महान कार्य की ओर इशारा करता था। हमारे पापों के लिए मरने के बाद अपने लहू के द्वारा वह हमेशा के लिए और हमारे सदैव के लिए उद्धार सुनिश्चित करने के बाद पवित्र स्थानों में प्रवेश कर गए। पद 12 में हम इसे पढ़ते हैं, जब यीशु का खून हमारे पापों के लिए सूली पर बहाया गया था, मंदिर का पर्दा यरूशलेम में ऊपर से नीचे तक दो भाग में फट गया था। इसे हम मती 27:51 में पढ़ते हैं, यीशु का प्रकाशन जो हमें बचाने के लिए जिए। स्वर्ग मंदिर में यीशु का दिन प्रतिदिन का काम क्या है? इसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 7:25 में, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा हमेशा के लिए उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, इब्रानियों 7:25। यीशु अब हमारी ओर से अपना खून अपना बलिदान पेश करने के लिए जीते हैं। अब वह हर इंसान को पाप की त्रासदी से बचाने के लिए परिश्रम पूर्वक काम कर रहे हैं। चलिए हम भी उन्हें पूरी तरह से उद्धारकर्ता और हमारे जीवन के मालिक के रूप में स्वीकार कर लें, ताकि वह हमें पूर्ण रूप से बचा ले। आइए हम उसको अपने आप को समर्पित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सारे योजनाओं के लिए, तेरे आशीषों के लिए, और तेरे पास आते हैं पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमसे बड़ा प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में भेजा, और अभी स्वर्ग में तेरे दाहिने हाथ हमारे लिए खड़ा है कि तुझसे वह हमारे लिए प्रार्थना करे, और तू उसका प्रार्थना को सुनता है और स्वीकार करता है पिता। हमें यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए तेरे पास आने के लिए मदद कर। हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने जीवन को दे देते हैं, और तू भी हमें स्वीकार कर पिता, और ग्रहण कर, और तेरे राज में बचा ले। हमारे हरेक श्रोताओं को तो आशीष दे, और हम सबों को आशीष के साथ तेरे राज के लिए तैयार कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया करके सुना ग्रहण कर। आमीन आमीन।
है नाम यीशु तेरा, तू मेरा प्रभु है। तेरे लिए जीऊ यीशु परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊ यीशु परमेश्वर।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।